आप यहां इस वक्त? आप इस वक्त यहां क्यों आए हैं? आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। आपको तो अभी घर पर होना चाहिए था, फिर यहां? आरवी ने हैरानी एक ही सांस में बाद एक सवाल किए जा रही थी और आंखें फाड़े नीचे खड़े शान को देखे जा रही थी। शान ने उसके सवाल सुने तो हल्के गुस्से में बोला, वहीं से सारे सवाल करोगी या आकर दरवाजा भी खोलोगी? आरवी हड़बड़ा गई। हाँ वो सॉरी, आपको अचानक यहां देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई थी। आप सामने गेट के पास आइए, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूं। आरवी ने इतना कहा फिर दौड़ती हुई नीचे चली आई। उसने दरवाजा खोला, कुछ ही मिनट बाद शान की गाड़ी वहां आकर रुकी। शान ने जैसे ही बाहर कदम रखा उसकी निगाहें आरवी पर जाकर ठहर गईं, जो दरवाजे को पकड़े खड़ी थी। आरवी ने गुलाबी सूट सलवार पहना हुआ था, जुड़े के खुलने की वजह से उसके लंबे सुनहरे घुंघरेले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। कुछ घुंघरेली लटे उसके चांद से चेहरे पर बादलों सी छाई हुई थीं। मांग में सजा सिंदूर अलग ही चमक बिखेर रहा था और हैरानी से बड़ी बड़ी उसकी कजरारी आंखों में आज शान का मन डूबता जा रहा था। एकदम सिंपल थी और शायद हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वो दुपट्टा डालना ही भूल गई थी। शान के कदम ठहर चुके थे और वो एकटक सामने खड़ी आरवी को देख रहा था। उसकी बेचैन निगाहों को जैसे करार मिल गया था, जैसे उसको इसी सुकून की तलाश थी, इसी के दीदार के लिए वो इतना बेकरार था। आरवी भी एकटक शान के दिलकश चेहरे को देख रही थी, जो इस अंधेरे में भी अपनी अलग ही चमक को बिखेर रहा था। उसके चेहरे का तेज अब भी उस अंधेरे में फैल रहा था, चेहरे पर हमेशा वाले सख्त भाव नहीं थे। दोनों तीन बार यूं एक दूसरे के सामने खड़े थे और उन्हें ना तो जगह और समय का कोई एहसास था, ना ही अपनी अवस्था का ही भान था। कुछ देर शान को एकटक निहारने के बाद आरवी का ध्यान टूटा और उसने हड़बड़ाकर उस पर से अपनी निगाहें हटा लीं। जहां जिसकी निगाहें आरवी की निगाहों पर टिकी थीं, वो भी होश में लौटा और आगे बढ़कर उसके पास चला आया। आरवी को अब तक भी होश नहीं था कि वो बिना दुपट्टा लिए यूं ही शान के सामने आ गई है, जबकि शान की नजरें आज उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो उसके पास चला आया तो आरवी ने उसको अंदर बुलाया और दरवाजा बंद करने के बाद उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, आपने पहले नहीं बताया कि आप आने वाले हैं, और आप अचानक वो भी इस वक्त यहां क्यों आए हैं? ओह, जरूर अंशु की याद आ रही होगी आपको, इसीलिए यहां चले आए, पर वो तो अभी सो रही है। आप कहेंगे तो मैं उसे जगा दूंगी, फिर आप उससे मिल लीजिएगा। आरवी ने खुद से ही उसके यहां आने की वजह का अंदाजा लगा लिया था और जवाब के इंतजार में शान को देखने लगी थी। शान अब भी तनाव में लग रहा था, मियां का करीब आना उसको बहुत तकलीफ दे रहा था, मन बेचैन था। आरवी का सवाल सुनकर उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, नहीं उसे सोने दो, बेवजह आधी नींद में उठेगी तो चिड़चिड़ी हो जाएगी, वैसे भी मैं अभी यहां उससे मिलने नहीं आया हूं। उसका जवाब सुनकर आरवी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से देखने लगी। अगर वो अंशु से मिलने नहीं आया है तो फिर इस वक्त यहां आने की और क्या वजह हो सकती है, यही सोच रही थी वो, पर उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शान की आंखों के सामने वो सब पल घूम गए जब निया उसके करीब थी और उसने ना कुछ देखा ना कहा और सीधे आरवी की बांह पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही शान ने उसको अपने सीने से लगाते हुए उस पर अपनी बाहों को कस दिया। आरवी बुत बनी उसकी बाहों के घेरे में कैद खड़ी थी, दोनों हाथ हवा में थे, आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह हैरानी से खुल गया था। शान ऐसा कुछ भी करेगा इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसे। वो कुछ सेकेंड तक शॉक्ड सी खड़ी रही, शान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। कुछ पल बाद आरवी होश में लौटी और वो एक पल में समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे शान उसको अपनी बाहों में भींचे खड़ा था वो सामान्य बात नहीं थी, और उसकी कसती दाहें ये बता रही थी कि कुछ जरूर हुआ है। शान को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। निया के करीब आने से उसका मन आहत था और आरवी की करीबी उस पर मरहम का काम कर रही थी। गुस्से से जलते बदन को उसके स्पर्श की शीतलता का एहसास हुआ और मन की बेचैनी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। ऐसा लगा जैसे धूप में झुलसते बदल को बारिश की शीतल बूंदें भिगोकर चली गई हों। दिल को सुकून सा महसूस होने लगा। शान इन एहसासों में खोसा गया था और अब वो बेहतर महसूस कर रहा था, वरना इतनी देर से वो तड़प रहा था इस गंदी चुभन का एहसास करवाने वाली फीलिंग से। पर आरवी की करीबी उस चुभन को कम करती जा रही थी। आरवी कुछ सेकेंड तक स्तब्ध सी उसकी बाहों में कैद खड़ी रही, फिर उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि शान की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त उसकी करीबी के वजह से उसकी खुद का दिल तेजी से धड़के जा रहा था। शान की छुअन में एक तड़प थी,
जिसको आरवी भी महसूस कर पा रही थी। उसको एहसास हुआ कि शायद शान अभी डिस्टर्ब है, शायद उसे उसके सहारे की जरूरत है। उसको शान की कही बात याद आ गई कि वो यहां अंशु से मिलने नहीं आया, मतलब वो शायद यहां उसी से मिलने आया होगा। जब कभी बहुत परेशान होता था तो घर पर तो वो उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी और उसको रिलैक्स करवाने का तरीका भी ढूंढ लेती थी। शायद आज भी वो किसी बात को लेकर परेशान हो और उसके पास आया हो ताकि थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। आरवी ने अपने आप ही परिस्थिति का अनुमान लगा लिया। शान ने अब भी उस पर अपनी बाहों को ऐसे कसा हुआ था मानो वो किसी भी सूरत में उसे खुद से दूर जाने ना देना चाहता हो। आरवी ने कुछ सोचा, फिर थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अपना हाथ उठाकर शान के पीठ पर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगी। शान को बेहतर महसूस होने लगा। सर अब तक तनाव से फटने को हो रहा था, पर अब धीरे धीरे सब शांत होता जा रहा था। कुछ तो था आरवी के स्पर्श और उसकी करीबी में कि धीरे धीरे शान का गुस्सा शांत हो रहा था। आरवी कुछ देर तक खामोशी से उसकी पीठ सहलाती रही, फिर उसने उसकी पीठ सहलाते हुए ही कहा, आप ठीक हैं? शान, जो आरवी की करीबी के एहसासों में कहीं गहराइयों में डूब गया था, उसके कान में जैसे ही ये शब्द पड़े वो एकाएक चौंक कर उन एहसासों से बाहर आया। अब उसको एहसास हुआ कि उसने अनजाने में किया क्या है। उसने तुरंत आरवी को छोड़ दिया और दो कदम पीछे हट गया। अपनी अचानक की हरकत की वजह वो समझ नहीं पा रहा था और हैरान परेशान सा जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसने तुरंत ही खुद को संभाला और निगाहें घुमाते हुए शर्मिंदगी से कहा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे।